एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र यही की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिसने पर्यावरण के बारे में हमारी समझ को वाकई बदल दिया। एल्डो लियोपोल्ड की ए सैंड काउंटी एल्मनैक।
नमस्कार। हाँ, ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि जैसे आपने कहा, ये प्रकृति को देखने उसे महसूस करने का एक नज़रिया बदलने वाला अनुभव है।
बिल्कुल। और बात सिर्फ नज़ारों की खूबसूरती की ही नहीं है।
नहीं नहीं, ये किताब तो हमारे नज़रिए को प्रकृति के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं और यहाँ तक कि हमारी नैतिकता को भी सीधी चुनौती देती है।
हाँ, लियोपोल्ड एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हैं, लेकिन वो बहुत गहरा है कि क्या सही और गलत का हमारा पैमाना सिर्फ इंसानों तक ही सीमित रहना चाहिए?
और आज के समय में ये सवाल कितना जरूरी हो गया है ना?
बिल्कुल। सोचिए जरा, जलवायु परिवर्तन, जानवरों की प्रजातियां खत्म हो रही हैं, जंगल कम हो रहे हैं।
हाँ, इन सब संकटों के बीच ये सवाल और भी अहम हो जाता है
कि क्या हमारी नैतिकता का दायरा बढ़कर इसमें जमीन, पानी, पेड़ पौधे, जानवर, मतलब ये पूरा सजीव संसार,
जिसे लियोपोल्ड जैविक समुदाय कहते हैं।
हाँ, जैविक समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी, क्या ये सब उसमें शामिल नहीं होने चाहिए?
तो आज की हमारी बातचीत का मकसद यही है। लियोपोल्ड का ये जो क्रांतिकारी विचार है, लैंड एथिक या जमीन की नैतिकता,
इसे समझना, ये क्या है, क्यों जरूरी है,
और हाँ, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ता है, तो चलिए शुरू करते हैं।
बिल्कुल। शुरुआत करते हैं लेखक से। एल्डो लियोपोल्ड, 1887-1948। वो कोई मतलब सिर्फ लेखक नहीं थे।
नहीं, कई चीजों का संगम थे। वो एक प्रशिक्षित वन विशेषज्ञ थे,
फॉरेस्टर
यानी जंगलों के प्रबंधन के जानकार। हाँ, और वन्यजीव प्रबंधन यानी वाइल्ड लाइफ मैनेजर में माहिर थे। पारिस्थितिकीन यानी इकोलॉजी के वैज्ञानिक थे,
और साथ ही एक गहरे विचारक, एक दार्शनिक भी।
सही कहा। और उनकी सोच सिर्फ किताबों से नहीं आई थी, वो जमीन से जुड़ी थी, उनके अपने अनुभवों से निकली थी।
दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में वो भी पारंपरिक सोच ही रखते थे।
हाँ, जैसे कि शिकार के लिए जानवरों की आबादी बढ़ाई जाए और उनके शिकारियों जैसे भेड़ियों को हटा दिया जाए।
लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया।
वो घटना है ना, जब उन्होंने खुद एक भेड़िये को गोली मारी थी।
हाँ, और फिर उसके आंखों में वो दम तोड़ती हुई हरी आग देखी।
कहते हैं उस एक पल ने उन्हें अंदर तक हिला दिया।
उन्हें अचानक लगा कि प्रकृति तो एक बेहद जटिल ताना बाना है,
और भेड़िया कोई दुश्मन नहीं बल्कि उस ताने बाने का एक जरूरी हिस्सा है।
बिल्कुल। इस अनुभव ने उनकी पूरी सोच ही बदल दी। मैं प्रोफेसर रहते हुए उन्होंने वन्य जीव प्रबंधन के विषय को एक नई दिशा दी।
हाँ, जो सिर्फ शिकार पर नहीं बल्कि इकोलॉजी के सिद्धांतों पर आधारित थी।
और फिर उन्होंने विस्कॉन्सिन में एक, कह सकते हैं, एक उजड़ी हुई जमीन खरीदी,
जिसे वो मजाक में द शैक कहते थे।
हाँ, और वो जगह उनकी निजी प्रयोगशाला बन गई। उन्होंने खुद मेहनत करके उस जमीन को फिर से जिंदा किया।
तो ये किताब देखा जाए तो उनके वैज्ञानिक ज्ञान, जमीनी अनुभव, दार्शनिक सोच और लिखने की अद्भुत कला का निचोड़ है।
उन्होंने जिस बदलाव की बात की उसे पहले खुद जिया।
बिल्कुल।
तो अब आते हैं किताब पर। ए सैंड काउंटी एल्मनैक, ये है क्या आखिर?
ये कई चीजों का मिश्रण है। एक तरफ तो ये उनके फार्म पर बीते वक्त का, मौसमों के बदलने का, प्रकृति के छोटे छोटे अजूबों का बहुत ही खूबसूरत काव्यात्मक ब्यौरा है।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ यह पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी पर एक मजबूत नैतिक घोषणा पत्र भी है। इसका असली मकसद है पाठक के अंदर एक पारिस्थितिकी विवेक, यानी प्रकृति के प्रति एक अंदरूनी समझ और जिम्मेदारी का एहसास।
हाँ, एक ऐसा एहसास कि हम इस धरती के मालिक या इसे जीतने वाले नहीं हैं,
बल्कि इस विशाल सजीव समुदाय के महज साधारण सदस्य और नागरिक हैं।
साधारण सदस्य और नागरिक, ये बहुत बड़ी बात है।
और जब हम खुद को इस समुदाय का हिस्सा मानने लगेंगे, तब हमारी सोच और हमारे काम अपने आप बदल जाएंगे, ऐसा उनका मानना था।
लियोपोल्ड हमें इस किताब में मानो तीन अलग अलग यात्राओं पे ले जाते हैं।
अच्छा, कैसी यात्राएं?
पहली यात्रा समय के साथ है। उनके फार्म पर जनवरी से दिसंबर तक मौसम कैसे बदलते हैं, प्रकृति का कैलेंडर कैसे चलता है। दूसरी यात्रा जगों की है, विस्कॉन्सिन से लेके पूरे अमेरिका में उनके सफर और अनुभव।
और तीसरी?
तीसरी और शायद सबसे अहम यात्रा है सोच की, दुनिया को एक पारिस्थितिक नजरिए इकोलॉजिकल वर्ल्ड व्यू से देखने की, एक नई समझ विकसित करने की।
और कमाल की बात यह है कि वो बड़ी गहरी बातें बहुत सहजता से समझाते हैं रोजमर्रा की चीजों के जरिए।
हाँ, जैसे कभी बर्फ पर बने खरगोश के पैरों के निशान कोई कहानी कह रहे हो, या किसी पुराने ओक के पेड़ के तने के छल्ले इतिहास बन जाते हैं।
वो प्रकृति के सालाना घटनाक्रम जिसे फिनोलॉजी कहते हैं,
यानी कब फूल खिलते हैं, कब पक्षी लौटते हैं।
हाँ, या फिर उजड़ी जमीन को फिर से हरा भरा करना, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, वन्य जीव प्रबंधन, संरक्षण का इतिहास, पर्यावरण दर्शन, इन सबको बड़ी खूबसूरती से एक साथ बुनते हैं वो।
तो इस किताब का लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे मूल्यों को झकझोड़ती है, ये उस सोच को सीधी चुनौती देती है जो प्रकृति को सिर्फ पैसे या फायदे के चश्मे से देखती है।
लियोपोल्ड हमें सिखाते हैं पहाड़ की तरह सोचना, थिंकिंग लाइक अ माउंटेन।
इसका क्या मतलब हुआ, पहाड़ की तरह सोचना?
मतलब छोटे फौरी इंसानी फायदों से ऊपर उठकर पूरे इकोसिस्टम की लंबी अवधि की सेहत, उसकी स्थिरता और संतुलन के बारे में सोचना।
अच्छा, जैसे हम सिर्फ ये ना सोचें कि पेड़ काटने से आज कितनी लकड़ी मिलेगी, बल्कि ये सोचें कि जंगल कटने से आगे चलकर मिट्टी, पानी और मौसम पर क्या असर पड़ेगा।
बिल्कुल, यही है पहाड़ की तरह सोचना।
चलिए अब किताब के अंदर थोड़ा और झांकते हैं। जैसा बताया, ये तीन हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा एसेंट काउंटी एल्मनैक।
हाँ, उनके फार्म पर गुजरे एक साल का महीना दर महीना ब्यौरा।
जैसे जनवरी की ठंड में वो बर्फ पर जानवरों के पैरों के निशानों को पढ़ना सिखाते हैं।
वो सिर्फ निशान नहीं बल्कि कहानियां हैं, जीने के संघर्ष की, शिकार और बचाव की।
हाँ, ये दिखाता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो प्रकृति हर पल हमसे बात कर रही है।
और फरवरी का निबंध गुड ओक तो कमाल का है।
हाँ, वो जिसमें एक पुराने ओक के पेड़ को काटते हुए।
हाँ, बिजली गिरने से मर गया था वो पेड़।
और जैसे जैसे आरी अंदर जाती है, हर छल्ला ग्रोथ रिंग उन्हें इतिहास के किसी पन्ने पर ले जाता है। कि कैसे उस पेड़ ने दशकों के मौसम, सूखा, बाढ़, यहाँ तक कि इंसानी इतिहास की घटनाओं को भी अपने अंदर समेट रखा है।
ये प्रकृति की अपनी याददाश्त है। और उसका समय का पैमाना हमसे कितना अलग और विशाल है, ये एहसास होता है।
फिर मार्च में प्रवासी पक्षियों की वापसी का जश्न है।
हाँ, कैनेडा गीज का आना। वो दिखाते हैं कि कैसे ये छोटी सी घटना पूरी पृथ्वी के बड़े चक्रों से जुड़ी है।
और जुलाई में वो एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछते हैं, जमीन का मालिक होना क्या होता है?
क्या सिर्फ कागज पर नाम होना काफी है?
या असली मालिक वो है जो उस जमीन को सच में जानता है, वहाँ की चिड़ियों की बोली पहचानता है, पौधों को समझता है, मिट्टी का ख्याल रखता है?
ये तो मालिकाना हक की पूरी धारणा पर ही सवाल उठा देता है।
बिल्कुल। फिर आता है किताब का दूसरा हिस्सा, स्केचेस हियर एंड देयर।
हाँ, यहाँ वो हमें अपने फार्म से बाहर ले जाते हैं, पूरे उत्तरी अमेरिका के अनुभवों में।
और यहाँ संरक्षण के मुद्दे और बड़े और ज्यादा पेचीदा हो जाते हैं।
और इसी हिस्से में है वो निबंध जो शायद उनका सबसे मशहूर काम है, थिंकिंग लाइक अ माउंटेन,
पहाड़ की तरह सोचना।
हाँ,
यहाँ वो पूरी ईमानदारी से उस भेड़िये को मारने का अनुभव बताते हैं जिसने उनकी सोच बदल दी थी। उन्हें एहसास हुआ कि जब इंसानों ने भेड़ियों को खत्म कर दिया तो नतीजा क्या हुआ?
हिरणों की आबादी बेतहाशा बढ़ गई
और उन लाखों हिरणों ने पहाड़ की सारी हरियाली चर डाली,
पेड़ पौधे सब खत्म।
नतीजा, मिट्टी का भयानक कटाव और पूरा पहाड़ ही बीमार पड़ गया।
और तब लियोपोल्ड को समझ आया कि अगर पहाड़ के नजरिए से देखें लंबी अवधि में, तो भेड़िया दुश्मन नहीं था
बल्कि उसकी सेहत के लिए जरूरी था।
असली खतरा तो बेकाबू हिरण बन गए थे।
ये निबंध शिकारियों के महत्व और प्रकृति में हर चीज के आपस में जुड़े होने का शायद सबसे शक्तिशाली उदाहरण है।
हाँ, और ये भी कि हमारे कामों के अनजाने नतीजे कितने दूर तक जा सकते हैं।
इसी हिस्से का एक और बहुत ही दर्दनाक निबंध है, पैसेंजर पिजन के स्मारक पर।
उन कबूतरों की कहानी जो कभी अरबों की संख्या में थे
और इंसान के लालच और अंधाधुंध शिकार ने उन्हें पूरी तरह से विलुप्त कर दिया।
ये जैव विविधता को बचाने की एक मार्मिक अपील है और हमारी अपनी नासमझी पर एक चेतावनी भी।
और मार्शलैंड एलेगी में वो सैंडहिल क्रेन पक्षी के जरिए जंगली अछूती प्रकृति के महत्व को दर्शाते हैं।
क्रेन की पुकार उन्हें तरक्की के शोरगुल में एक भूली हुई तुरही की आवाज जैसी लगती है,
जो हमें याद दिलाती है कि दुनिया में अब भी कुछ ऐसा है जो पूरी तरह इंसानी काबू में नहीं है और शायद उसे वैसा ही रहना चाहिए।
और फिर आता है किताब का तीसरा और आखिरी हिस्सा, द अपशॉट।
यानी सारी बातों का निचोड़, उनका अंतिम संदेश। यहाँ वो अपने दर्शन को, अपनी सोच को बहुत साफ शब्दों में रखते हैं।
इसमें वो बात करते हैं कंजर्वेशन एस्थेटिक,
कंजर्वेशन का सौंदर्य बोध।
हाँ, इसका क्या मतलब है?
उनका कहना है कि प्रकृति को बचाने की असली इच्छा सिर्फ शिकार की ट्रॉफी जीतने या साफ हवा में घूमने से नहीं आती।
तो फिर कैसे आती है?
ये तब पैदा होती है जब हम प्रकृति की कार्यप्रणाली को, उसकी जटिलता और सुंदरता को गहराई से समझने और उसकी कद्र करने की क्षमता विकसित करते हैं। ये सिर्फ देखना नहीं बल्कि समझ के साथ महसूस करना है।
और वो वाइल्डनेस यानी जंगली अछूते इलाकों के महत्व पर भी जोर देते हैं।
हाँ, वो कहते हैं ये सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये हमारे लिए वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की तरह है
जहाँ हम समझ सकते हैं कि एक स्वस्थ इकोसिस्टम कैसे काम करता है। ये वो बेसलाइन है जिनसे हम अपनी छेड़छाड़ के असर को माप सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है और जीवन के अनगिनत रूपों के भंडार भी।
और फिर आता है वो निबंध जो इस किताब का दिल है, द लैंड एथिक,
जमीन की नैतिकता। यहाँ लियोपोल्ड अपना सबसे बड़ा तर्क पेश करते हैं।
वो कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान सभ्य हुआ, उसकी नैतिकता का दायरा बढ़ता गया। पहले सिर्फ परिवार या कबीला, फिर समाज, फिर शायद पूरी इंसानियत।
हाँ, और अब वो कहते हैं कि वक्त आ गया है कि हम इस दायरे को और फैलाएं।
और इसमें जमीन को, यानी मिट्टी, पानी, पेड़ पौधों और जानवरों के पूरे समुदाय को शामिल करें।
इसी को समझाने के लिए वो लैंड पिरामिड या बायोटिक पिरामिड का विचार देते हैं।
अच्छा, ये क्या है लैंड पिरामिड?
इसे आप एक ऊर्जा के पिरामिड की तरह सोच सकते हैं। सबसे नीचे मिट्टी, जिससे ऊर्जा पौधों में जाती है,
फिर पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं
और उन्हें मांसाहारी जीव। ऊर्जा की ये धारा नीचे से ऊपर बहती है।
और इंसान?
इंसान इस पिरामिड का हिस्सा जरूर है, लेकिन वो इसका मालिक या कंट्रोलर नहीं है।
इसीलिए लियोपोल्ड का निष्कर्ष है कि इंसान को अपना रवैया बदलना होगा।
हमें जमीन समुदाय के विजेता से बदलकर उसका साधारण सदस्य और नागरिक बनना होगा।
और यही वो अपना वो मशहूर नैतिक सूत्र देते हैं जो इस पूरी सोच को एक वाक्य में समेट देता है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस किताब से निकलने वाले मुख्य संदेश क्या है? मेरे लिए तो सबसे पहला और जरूरी है जमीन की नैतिकता का ये विचार।
हाँ, कि सही गलत का पैमाना सिर्फ इंसानी फायदे तक सीमित ना हो बल्कि पूरे सजीव समुदाय तक फैले।
और इसकी कसौटी क्या है? लियोपोल्ड का सूत्र,
कोई भी काम तब सही है जब वो इस जैविक समुदाय की अखंडता, स्थिरता और सुंदरता को बनाए रखने में मदद करे, और तब गलत है जब वो इसके उलट काम करे।
बिल्कुल, ये एक क्रांतिकारी सोच है।
दूसरा बड़ा संदेश है पारिस्थितिक सोच या साक्षरता, इकोलॉजिकल थिंकिंग लिटरेसी विकसित करने की जरूरत,
यानी चीजों को अलग अलग टुकड़ों में नहीं बल्कि उनके आपसी जुड़ाव, उनके संबंधों और पूरे सिस्टम पे पड़ने वाले असर को समझना।
प्रकृति को सिर्फ देखना नहीं, उसे पढ़ना सीखना।
हाँ, और पहाड़ की तरह सोचना इसी गहरी समझ का प्रतीक है। आज के फायदे से आगे बढ़कर कल के परिणामों के बारे में सोचना।
जैसे हम अपने शहरों में देखते हैं, तालाब पाट दिए जाते हैं विकास के नाम पर,
और फिर बाढ़ आती है। ये जुड़ाव न समझने का ही नतीजा है।
तीसरा, लियोपोल्ड सिर्फ आर्थिक फायदों पर टिके संरक्षण की तीखी आलोचना करते हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि अगर हम जंगल, नदी या किसी जानवर की कीमत सिर्फ इस बात से तय करेंगे कि वो हमें कितने रुपए कमा कर दे सकता है,
तो हम उन बेशुमार चीजों को नजरअंदाज कर देंगे या खत्म कर देंगे जिनका कोई बाजार भाव नहीं है।
जैसे कोई छोटा सा कीड़ा जो परागण में मदद करता है, या कोई दलदल जो पानी साफ करता है।
तो संरक्षण सिर्फ मुनाफे का सौदा नहीं, ये एक नैतिक कर्तव्य होना चाहिए।
चौथा संदेश है पारिस्थितिक विवेक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी, इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का।
ये कोई बाहर से थोपा गया नियम नहीं बल्कि हमारे अंदर से उठी एक आवाज है
कि हम जिस धरती पर रहते हैं उसकी सेहत हमारी भी जिम्मेदारी है।
ये विवेक कानून से ज्यादा अनुभवों से, प्रकृति से सीधे जुड़ने से और उस पर गहराई से सोचने से पैदा होता है।
जैसे हमारे यहाँ कई समुदायों में आज भी पेड़ों या नदियों को पूजने की परंपरा है।
हाँ, ये उसी विवेक का एक रूप हो सकता है।
और पांचवा, जो इन सबसे जुड़ा है, वो है आपसी जुड़ाव और विनम्रता का भाव, इंटरकनेक्टेडनेस एंड ह्यूमिलिटी।
प्रकृति एक बेहद जटिल जाल है, लैंड पिरामिड, जहाँ हर धागा, हर कड़ी अहम है।
और इंसान इस जाल का मालिक नहीं, सिर्फ एक धागा है।
उनकी वो बात याद आती है, समझदार मैकेनिक का पहला नियम है कि सारे पुर्जे संभाल कर रखो।
ये हमें विनम्रता सिखाता है। हमें ये मानना होगा कि हम सब कुछ नहीं जानते और प्रकृति में बेवजह दखल देने के नतीजे खतरनाक हो सकते हैं।
लियोपोल्ड की भाषा, उसमें एक अजीब सी ताकत और खूबसूरती है। कुछ वाक्य तो ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद भी जहन में गूंजते रहते हैं।
बिल्कुल, जैसे उनका वो लैंड एथिक वाला सूत्र जिस पे हमने अभी बात की।
कोई चीज तब सही है जब वो जैविक समुदाय की अखंडता, स्थिरता और सुंदरता को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है। वो तब गलत है जब वो इसके विपरीत प्रवृत्ति रखती है।
ये कितना सरल लेकिन कितना गहरा पैमाना है। ये हमें अपने हर फैसले को, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक, इस कसौटी पर कसने को कहता है।
एक और बात जो किताब की शुरुआत में ही दिल को छू जाती है।
हम जमीन का दुरुपयोग करते हैं क्योंकि हम उसे अपनी संपत्ति समझते हैं। जब हम जमीन को एक ऐसे समुदाय के रूप में देखेंगे जिससे हम जुड़े हैं, तब हम शायद उसे प्यार और सम्मान के साथ इस्तेमाल करना शुरू करेंगे।
ये कितनी सीधी चोट है हमारी सोच पर। जब तक हम जमीन को सिर्फ एक वस्तु, एक चीज समझेंगे, उसका शोषण करते रहेंगे।
लेकिन जिस दिन उसे एक जीता जागता समुदाय मान लेंगे जिसके हम भी सदस्य हैं, हमारा व्यवहार अपने आप बदल जाएगा।
चीज से समुदाय, शोषण से सम्मान, क्या बात है।
और जैव विविधता बचाने पर उनका तर्क, जो आज और भी ज्यादा प्रासंगिक है।
हर पुर्जे को बचाए रखना ही समझदारी भरी छेड़छाड़ का पहला एहतियात है।
मतलब प्रकृति के किसी भी हिस्से को, किसी भी जीव को खत्म करने से पहले हजार बार सोचो।
क्या पता उसका क्या काम है जिसे हम अभी समझते भी नहीं।
ये एक तरह से सावधानी और विनम्रता का सिद्धांत है जो आज की तेज रफ्तार विकास की दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं।
तो ये तो हुई बड़ी और जरूरी बातें, लेकिन सवाल ये है कि हम, मतलब आम लोग, इन विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, ये सिर्फ किताबों की बातें ना रह जाएं।
मेरे ख्याल में सबसे पहला और आसान कदम है अपने आसपास की दुनिया के प्रति थोड़ा और जागरूक होना, जिसे लियोपोल्ड जगह की समझ कहते हैं।
बस थोड़ा ध्यान देना शुरू करें।
हाँ, हमारे घर के पास कौन से पेड़ हैं, उन पर कौन सी चिड़ियाँ आती हैं, मौसम बदलने पर क्या फर्क दिखता है, चाहे तो एक छोटी सी डायरी भी बना सकते हैं।
इससे वो देखने और समझने की कला आएगी जिसकी बात लियोपोल्ड करते हैं।
बिल्कुल। दूसरा, हम अपने उपभोग, कंजम्पशन के बारे में ज्यादा सोच समझ के फैसले ले सकते हैं।
ये सोचना कि हम जो चीजें खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनका पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है।
हाँ, क्या हम स्थानीय चीजें खरीद सकते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, पानी या बिजली बचा सकते हैं।
ये छोटे छोटे चुनाव मिलकर बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये हमारी खरीदारी को सिर्फ जरूरत पूरी करना नहीं बल्कि एक नैतिक कार्य बना देता है।
तीसरा, अगर किसी के पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी है, बैल्कनी में गमले, छोटा सा बगीचा या गांव में खेत,
तो उसे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने की मशीन न समझें, उसकी देखभाल, स्टुअर्डशिप करें।
मिट्टी में जैविक खाद डालें, वहां के मौसम के अनुकूल पौधे लगाएं, जहरीले कीटनाशकों से बचें।
शायद चिड़ियों के लिए पानी रख दें या तितलियों के लिए कुछ फूल लगा दें।
हाँ, ये सब छोटी पहल है।
और अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें,
तो ये विचार हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनने चाहिए। बच्चों को स्कूलों में सिर्फ विज्ञान के तथ्य न रटाए जाएं, बल्कि प्रकृति से जुड़ाव और उसके प्रति सम्मान का भाव भी सिखाया जाए।
हमारे शहरों की योजना, अर्बन प्लानिंग, ऐसी हो जिसमें हरे भरे पार्कों, तालाबों और जंगली जानवरों के आने जाने के सुरक्षित रास्ते, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स के लिए जगह हो।
हमारी खेती और जंगल लगाने के तरीके ऐसे हों जो मिट्टी, पानी और जैव विविधता का भी ध्यान रखें, सिर्फ मुनाफे का नहीं।
और शायद सबसे अहम, हमारी सरकारी नीतियां सिर्फ आर्थिक फायदों नुकसानों पर आधारित ना हो।
किसी जंगल को काटना है या बचाना है, इसका फैसला सिर्फ लकड़ी की कीमत या बनने वाले प्रोजेक्ट के मुनाफे पर ना हो।
उसे बचाने का नैतिक आधार भी देखा जाए कि वो जंगल उस पूरे जैविक समुदाय की सेहत के लिए कितना जरूरी है। ये हमारी तरक्की या विकास की परिभाषा को ही बदलने की बात है।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि पर्यावरण की समस्याएं, ये असल में तकनीकी या आर्थिक कम, नैतिक और सांस्कृतिक ज्यादा है।
हाँ, हमें सिर्फ नई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को नए सिरे से गढ़ना होगा।
मालिक और गुलाम का नहीं, बल्कि एक ही परिवार के सदस्यों जैसा।
मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली और कहूँ तो उम्मीद जगाने वाली बात ये जानना था कि लियोपोल्ड खुद कैसे बदले।
हाँ, वो शिकार और फायदे वाली परंपरागत सोच से शुरुआत करके इतने गहरे पारिस्थितिक विचारक बने।
ये दिखाता है कि हम सब बदल सकते हैं अगर हम अपने अनुभवों से सीखने को तैयार हों और अपनी पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाने की हिम्मत रखें।
उनका अपना जीवन ही उनकी बातों का सबसे बड़ा सबूत है।
और इस किताब की यही खासियत है, ये दिमाग को भी खुराक देती है और दिल को भी छूती है। ये विज्ञान की गहरी बातों को बहुत ही खूबसूरत भाषा और नैतिक सवालों के साथ पेश करती है।
ये हमें सिखाती है कि कैसे प्रकृति को सचमुच देखें, उसके अनगिनत रिश्तों को समझें
और खुद को इस धरती का मालिक नहीं बल्कि इस अनोखे, अद्भुत समुदाय का एक विनम्र और जिम्मेदार नागरिक माने।
ये एक ऐसी दृष्टि है, एक ऐसा नज़रिया है जिसकी आज की दुनिया को शायद सबसे ज्यादा ज़रूरत है।
बिल्कुल, इस पर सोचना वाकई ज़रूरी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।